ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भागवतम हम लोग इस नित्य पाठ के अंतर्गत सप्तम स्कंद के नवे अध्याय का आज 53वां श्लोक का पाठ करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए माम अप्रणीतः आयुष्मन् दर्शनम् दुर्लभम् हि मे दृष्ट्वा माम् न पुनः जन्तु आत्मानम् तप्तुम् अर्हते माम् प्रणीत आयुष्मन् माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हिमे दर्शनम दुर्लभम हिमे दृष्ट्वा माम न पुनर्जन्तु आत्मानं तप्तुमर्हति माम प्रणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हिमे दृष्ट्वा माम न पुनर्जन्तु आत्मानं तप्तुमर्हति। माम प्रणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हिमे आत्मानं तप्तुमर्हति
माम
प्रणत आयुष्मन्
दर्शनम दुर्लभम
हिमे
दृष्ट्वा माम न
पुनर्जन्तु आत्मानं तप्तुमर्हति माम प्रणत आयुष्मन् लेडीज बिना प्रसन्न किए आयुष्मान ए दीर्घ जीवी प्रहलाद दर्शनम दर्शन दुर्लभम तो कभी कभी मिलने वाले ही निश्चय ही मैं मेरा दृष्टवा देखकर माम मुझको ना नहीं पुनः फिर जंतु जीवात्मा आत्मानम अपने लिए तब तुम पछताने के लिए अरहति योग्य होता है। अनुवाद तत्पद श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। हे प्रहलाद तुम दीर्घजीवी हो, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जानता है और न मेरे महत्व को समझता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है और मुझे प्रसन्न कर लिया है उसे फिर अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। तात्पर्य भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई किसी तरह से भी सुखी नहीं रह सकता, किंतु जिसने भगवान को प्रसन्न करना सीख लिया है उसे अपनी भौतिक दशा पर कभी भी पछताना नहीं होता। अज्ञान निबंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोहृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सकदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण बाणां सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचां पङ्गुमलं गजतगिरिं जपकृपातमहं वन्दे परमा श्री गुरु नदिन जय तं सुरत पंगौ मम मंदमते मत्सर्वश पदां भोजो श्री राधा मदन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण जय राम तभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदृश गौर स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात मिणत आयुष्मन दर्शन दुर्लभम हिमे दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु आत्मानं तप्तमधत्ति तो आप श्लोक नित्यवती इस समय भागवतम पाठ में आते हैं तो यहाँ चलने वाली इस कथा से आप लोग बलिभांति अवगत हैं कि किस प्रकार सिंदर सिंह देव प्रहलाद महाराज की स्तुति से प्रसन्न होकर के उनको वर देने के लिए वो तैयार है या उनको वर देने के लिए इसी प्रवचन में उनके द्वारा उच्चारित श्लोक है। कहते हैं क्या माम पिणत आयुष्मन दर्शन ही दुर्लभ ही मैं दर्शनम दुर्लभ ही मैं हे आयुष्मन भगवान श्री प्रहलाद महाराज को चिरंजीव होने का वरदान देते थे। आयुष्मान कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं कर देता है तब तक इस संसार में अति दुर्लभ जो मेरे दर्शन है उनको वो प्राप्त नहीं कर पाता है। वस्तुतस्त जीव की जो कुछ भी मेहनत है वो मेहनत केवल भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। अर्थात कभी भी किसी साधक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतनी बढ़िया साधना करता हूं तो भगवान को बाध्य होकर के मुझे दर्शन देना पड़ेगा। या कभी कभी कुछ भक्तों का निज विचार सुनने में आता है कि 15 करोड़ या 15.5 करोड़ जप करने से भगवान प्रकटित हो जाएंगे। उसका अर्थ भगवान वो परम स्वतंत्र है उनको वो नहीं जानते। भगवत प्राप्ति में किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन कभी भी नहीं हो सकता है अलावा भगवत कृपा। तो हम लोग जो भी मेहनत करते हैं वो अंततः भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस बात को साधकों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अहम होना चाहिए कि हम लोग भगवत कृपा को किस प्रकार प्राप्त करें। दर्शन के द्वारा श्रवण के द्वारा कीर्तन के द्वारा जो नवदा भक्ति है उन नवदा भक्ति में से किसी भी भक्ति में हमारा प्रीति है हमारा प्रेम है वो भगवान की बदौलत मानना चाहिए या भगवान की ही देन उनको समझना चाहिए। मैंने ये प्रीति अर्जित कर लिया दर्शन में श्रवण में या कीर्तन में बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं ये नहीं मानना चाहिए। कभी सुनना चाहिए भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से हम लोग उन भगवान का दर्शन कर सकते हैं जो बड़े बड़े योगी सिद्ध महात्माओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं, वह है मेरा दर्शन दुर्लभ, पर कोई मुझे प्रीति मुझे प्रसन्न करके कोई व्यक्ति उनको प्राप्त भी कर ले, यदि प्राप्त कर ले किसी प्रकार से मुझे प्रसन्न करके मेरे दर्शन को प्राप्त हो जाए, तो बोलते हैं उनके बाद उनको कभी भी किसी भी वस्तु के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। कहते दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतुर आत्मनम तप तुम अर्थ, या जिन्होंने मेरे दर्शन को प्राप्त कर लिया उनका हृदय कभी भी नहीं चलेगा। अच्छा, हृदय का जलन क्या है? भोगों की स्प्रिया। तो आश्चर्य की बात है, भगवान उसी भोग के लिए प्रहलाद महाराज को प्रेरित कर रहे हैं और वही भोग देने के लिए बोल रहे हैं। वही भोग देने के लिए श्री नरसिंह देव बोले उसी को मांगो न तब तुम अर्हति, और जिसके कारण तुम तुम्हारा हृदय तप्त नहीं होगा। कई आचार्य उसमें अपनी टिप्पणी ज्यादा नहीं लिखे, और जो लिखे है वो सीधा अन्वय किए हैं, और कुछ एक दो आचार्यों के द्वारा इनके ऊपर कुछ टिप्पणी लिखी गई है, तो उसमें कुछ ज्यादा कोई मन को लुभाने वाला कोई बात नहीं, अर्थांतर जो लोभ के द्वारा पढ़ सके इस बात पर विचार कर सके ऐसा कोई बात नहीं मिला है। वंशीधर जी कुछ एक बात लिख रहे हैं, वो कहते हैं इसका पर कि महाराज पुत्र ने जब पुत्री का दोहन किया उनके बाद में किसने किसको बछड़ा बना करके अपने अनुसार दूध को दोया, इस कथा में प्रहलाद महाराज को बछड़ा बना करके असुर लोगों ने शराब का दोहन किया, इस घटना को कोट करते हुए वो कहते हैं कि ये जो श्लोक है वो श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की कुछ डिमांड के लिए बोल रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज ने इन समस्त जीवों के इस परे ब्रह्मांड को उद्धार करने की इच्छा जो की। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता था तो श्री नारद जी आगे जो श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं एवं प्रलोभ्य मानो अपि, ये नहीं बोलते थे, ये कभी नहीं बोलते थे। नारद जी सीधा बोल रहे हैं कि इस प्रकार प्रलोभन देने के बावजूद भी श्री प्रहलाद महाराज तस्मस नहीं हुए, ऐसा कहते हैं उनका हृदय थोड़ा भी अस्थिर नहीं हुआ भगवान की बातों से, उल्टा वो भगवान को सुनाने लगे दो चार शब्द अपनी ओर से। अरे ऐसा क्यों बोल रहे, पहले से ये तो मैं जल रहा हूं और फिर जलने वाला चीज आप दे, और आप डांटने जैसा बात भगवान, तो ये नहीं होता था। तो इसके ऊपर शिल्प उपाय दिखते हैं कि उसे अपनी भौतिक दशा पर पछताना नहीं होता। बहुत सुंदर वाक्य है शिल्प उपाय महाराज के, भौतिक दशा पर कभी पछताना नहीं होगा। उसका अर्थ ये है कि जब इस भौतिक जगत में वो जब तक रहता है तब तक भोग उनको खोजना नहीं पड़ता है, भोग उनको खोज खोज करके सामने से आते हैं। जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं और जो कुछ नहीं चाहते भोग नहीं चाहते हैं उस वो उनके सामने आते हैं। और आज की बात इस संसार में यही है कि हमें जो नहीं चाहिए वो सामने आता है और चाहिए वो दूर जाता है, ये सिद्धांत है। इस मायाबद्ध जगत में यही चीज है, व्यक्ति जो चाहता है कि मैं बढ़िया से सोऊं, तो उनको वो कमांडर सोने नहीं देता है। साधना में लगाएगा, उनका वो कर्तव्य है, वो लगाएगा उठा उठा करके। तो जो चाहिए जीव को इस संसार में, वो दूर सुदूर दिखाई पड़ता है, वो मिलता नहीं। और जो नहीं चाहिए वो मिलता है, आखिर उठ करके आना ही पड़ता है। तब तक वो लोग मानते नहीं, घंटा बजाते या करते वो करते मानते नहीं। जब तक दर्शन में आ जाए तब कुछ शांति रहती है। कहने का तो संसार में व्यक्ति को जो भौतिक सुख चाहिए, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर के जिन्होंने सुख प्राप्त किया है उनको पछताना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय को पुनः निर्मल करते। चैतन्य चेतामृत में इस बात को बताया गया है। भगवान बोलते हैं वो तो मूर्ख, लेकिन आमी भी क्या, मैं तो जान क्या। अतः भगवान सने सने जीव की उन भोगवांछा को उनके हृदय से निकाल देते हैं। क्या कुछ ऐसी परिस्थिति में उनको रख देते हैं कि कभी भी भोग में उनका लगाव न हो। इसलिए भगवान से मांगने वाला व्यक्ति कभी पछताता नहीं। लेकिन पंचम स्कंद में देवता लोग कुछ बात लिखते हैं, उसमें वो लोग बोलते हैं कर वो पछताना पड़ेगा। बहुत सुंदर श्लोक वहां पर दिखाई पड़ता है। तो कहते सत्यम दिशति अर्थतम अर्थतम पुनर्थता यत स्वयं विदत्ते भजतम अनिच्छता मिच्छा पिदानम निज पाद पल्लवम। वो तो एक उपदेश के लिए इस श्लोक को बोलते हैं। वो कहते हैं कि सत्यम दिशति अर्थतम अर्थतम विनाम। ये ठीक है कि भगवान के पास कोई मांगने के लिए जाए तो भगवान अर्थ देते हैं, अर्थात इस जगत के पदार्थ उनको दे देते हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है जीव के लिए। कहते हैं कि नई बार अर्थ दे पुनर्थता है, वो ले करके भी जीव की लोभ लालसा बढ़ जाती है, पुनः वो भोग की लालसा उनके हृदय में बढ़ जाती है। ऐसा कहते देवता लोग, नैवा अर्थ दो जब पुनरअर्थता जब वो भगवान देते हैं तो पुनः पुनः और ज्यादा उनके हृदय में वो डिमांड उठता रहता है और उनका हृदय जलता रहता है। ये कहते हैं देवता लोग, बिल्कुल विरुद्ध है। यहां पर देखो विरोधाभास हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि स्वयं विदत्त भजता मनिष्ठता, अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास भोग की डिमांड नहीं करता है, तो कहते हैं मिच्छा पिदानम निज पाद पल्लव, तो अपने पाद पल्लव को देख करके भगवान उनको परम शांति प्रदान करते हैं। अर्थात कभी भी उनका मन उन भगवान के अलावा किसी भी वस्तु का स्प्रिया नहीं करेगा। और भगवान की इच्छा से तो आनंद ही मिलना है, दुख मिलना है इन भौतिक वस्तुओं से। लेकिन देवता लोग ये तो बता रहे थे यत पुनर्अर्थता जत, वो दोबारा मांगेगा उसको, ऐसा बोलते। और जबकि चैतन्य चेतावत में बताया गया है कि जीव विष मांगता है, भगवान बोलते हैं वो जीव के पास बुद्धि नहीं है, वो तो मेरा बेटा है, लेकिन वो विष मांगना मैं क्यों, तुम बस तो बुद्धि है। लेकिन देवता लोग देखिए ये बोलते हैं, है ना, परस्पर थोड़ा विरोधाभास दिखा, वास्तव में विरोधाभास नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटना भी हुई है, चलिए हम उनमें चलते हैं, एक आध घटना लेकर के उनको समझा जाए कि ये किस प्रकार होता है। वो अगर जीव की जो इच्छा उठती है तो वो इच्छा उनको ज्यादा दुखी करने वाली नहीं होती, एक आध जन्म दुख दे देगी। कहने का अर्थ ये है जो देवता लोग बोल रहे हैं कि कि वो तो पुनरर्थित है, दोबारा मांगने मांगेगा और दोबारा विषय मांगेगा तो सुनिश्चित है दुख मिलेगा, ये तो निश्चित है। ये जगत का स्वभाव है कि कुछ भी जीव यहां पदार्थ का डिमांड उनके हृदय में है, वो जस से लेकर के कुछ भी वस्तु का, तो भगवान को वो रास नहीं आता है 100%। और कभी इसके लिए बड़े बड़े भक्त कभी दुखी दिखाई पड़ते हैं, इतना दुख, इतना दुख कष्ट में डाल दिया जाता है, लेकिन उनके सुधार के लिए ही होता है। अंततः उनको पछताना पड़ता है उसी विषय वस्तु के लिए, और पछता पछता करके रो करके भगवान की डिमांड उनके हृदय में उठती है। यस, ये भगवान का आइडिया। हमें लगता है अरे इतने महान भक्त है, इतना दुख क्यों आया, कैसे इस प्रकार हो सकता है, वो होगा। उनका भक्ति कैसे चलेगा, भगवान इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार इसका भजन चलता है, उसी व्यवस्था भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। मान लीजिए भोग का भी इच्छा है और भगवान की भक्ति का भी इच्छा है कि मैं भक्ति भी करूं भोग भी करूं, तो भगवान क्या देखेंगे, भगवान लिख गया क्या देखेंगे, जो देवता बोलते इस प्रकार होगा ना, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना मैं भक्त कभी नहीं। तो नाश का क्या, शरीर नाश की बात है नहीं, शरीर तो नाश होता ही रहता है, क्षण प्रतिक्षण उनका नाश हो रहा है, एक बार प्रलय हो जाए अत्यंतिक तो दूसरा मिलेगा, शरीर की कहां तो कोई त्रुटि थोड़ी है, जगत में संसार में शरीर बहुत है। अंततः जो भगवान कहते हैं कि न मैं भक्त प्रणश्यति का अर्थ, उन्होंने जो भक्ति किया है वो भक्ति उनके पास से नहीं चाहिए, मैं रक्षा करता किसी भी दशा में भगवान, भगवान की और अपनी भक्ति की रक्षा जो भक्तों के हृदय में है, वो भक्ति की रक्षा के लिए बाह्य कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन होता है उनके कल्याण के लिए। तो भगवान इसको भगवान कहे, चैतन्य चरितामृत में भगवान तो कहते हैं हमें विज्ञ है कि नहीं, और कविराज गोस्वामी पाद का वाणी हो मिथ्या या इतर हो नहीं सकता। ताइए तो इस थोड़ी असमंजस के लिए हम लोग ध्रुव चरित्र जाते हैं, वो ध्रुव चरित्र में इसको वो चरित्र में जाकर इनको बहुत परफेक्ट तरीके से हम लोग समझेंगे। वहां पर घटना इस प्रकार कुछ है कि जब ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान के द्वारा भगवत प्राप्ति हो गया, और भगवत प्राप्ति के बाद वो अपने नगर की ओर चले, तो उस टाइम श्री मैत्रेय जी कुछ एक दो श्लोक कहते कहते सो अपि संकल्प जम विष्णु पाद पाद शिव उपसादित प्राप्त संकल्प निर्माण नातिपितव्य का पुनः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान विष्णु की पाद सेवा के कारण ध्रुव महाराज का संकल्प सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं क्या, न पाद शिव उपसारितम विष्णु प्राप्य संकल्प, उनका संकल्प सिद्ध हो गया, लेकिन कहते हैं कि संकल्प सिद्ध होने के बाद ना अतिप्रीत विघात होना, लेकिन अपने नगर की ओर जाते वो प्रसन्न नहीं थे, अप्रसन्न थे, उनका चित्त बिल्कुल उनको कोस रहा था, वो भीतर हाय हाय कर रहे थे, तो ठीक नहीं हुआ, तो ठीक नहीं, क्या ठीक नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति कर लिया था, भगवान ने दर्शन दे दिया था, ठीक क्या नहीं हुआ, क्यों पछता रहे। एक जन्म पर्यंत 36,000 साल तक भगवान का वियोग, वही पछताना है। भगवान के अति प्रीति पात्र के लिए एक दिन का बिच्छो ही उनके लिए बहुत छटपट आहट निर्माण करता है। तो 36,000 साल कोई कहेगा ना गोपीजन तो छटपट आदि में आनंद मानती थी, बात है क्यों तो बोलते हैं वो तो ठीक है उचित है वो छटपट आना उचित है, लेकिन वो एक दूसरी अवस्था है। और यहां पर इस भौतिक जगत के भोगों में उनको उनके साथ रहते हुए पछताना, क्योंकि 36,000 साल राज्य करना पड़ा ध्रुव महाराज को। ऐसा बात नहीं है कि ध्रुव महाराज भगवान को भूल गए थे, लेकिन कभी कभी उनको याद दिलाने के लिए मनु महाराज या ब्रह्मा जी को आना पड़ा जब यक्ष के ऊपर टूट पड़े थे। जो कुछ भी है उनकी मनसा को जब इस प्रकार का, तो विदुर जी ने कुछ प्रश्न किया, भक्त सुदुर्लभम यत परम पदम हरे माया विनस्त चरण अर्चित अर्चनार्जितम लब्धवा अपि सिद्धार्थम इवेक जन्मना कथम स्व आत्मानम अमन्यत अर्थवित। विदुर जी ने कहा कि भगवान का दर्शन अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ भगवान का दर्शन है और वो मिलता है भगवान को प्रसन्न करके, और ध्रुव महाराज भी अत्यंत विवेकी थे, अर्थवित का अर्थ वो जानकार थे कि किस में उनका भलाई है, वो तो जानने वाले थे। लेकिन तीस पर भी कहता लब्ध अपि सिद्धार्थ, और उन्होंने ऐसे भगवान जो अति दुर्लभ या बड़े बड़े योगी व्यक्तियों के लिए भी हजारों साल तपस्या के बावजूद भी जो जिनको प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसे भगवान के चरणारविंद को एक जन्म में उन्होंने प्राप्त कर लिया। एक जन्म में प्राप्त कर लिया, क्या 6 महीने में प्राप्त कर लिया, एक जन्म में 6 महीने में। तो कथम स्वात्मानम, वो कैसे वो अपने आप को अकृतार्थ माने, क्यों अकृतार्थ, क्या जल्दी प्राप्त हो गया भगवान इसलिए अकृतार्थ मानने लगे, नहीं जल्दी हो या बहुत लंबे काल के बाद, भगवान एक बार प्रसन्न होकर के दर्शन दे दे उनके बाद में कभी भी व्यक्ति के हृदय में अकृतार्थता नहीं आ सकती, मैं अकृतार्थ रह गया फिर तो मतलब ग्यारह भगत प्राप्ति का क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं। विदुर जी ने बहुत सुंदर प्रश्न इस प्रकार उठाया, तो उनके उत्तर में मैत्री जी कहते हैं कि मातु सपत्न स्मरण निश्चल मुक्ति पद मुक्ति तस्मात तापम उपेयवान। वो बोलते हैं मैत्री जी कहते हैं साफ साफ श्लोक बता रहे कि जब ध्रुव महाराज उन तपस्या किए अरे भगवान प्रसन्न हो गए, तो उस टाइम भी उनकी भी माता के वो बाघ बाण से उनका हृदय पीड़ित, ऐसा बोल रहे हैं सिद्धार्थ लोग बोल रहे हैं। विदस्तु तान स्मरण रिधि वागबाणे सपत्न्या मातु बोलते पीड़ित, और भगवान ने क्या आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारी वो माता भी चल जाएगी, क्यों ना उनका बच्चे को वो यक्षों ने कोई मार देगा जब, तो खोजने के लिए वो जाएगी वो जंगल में, वो भी जल करके मर गए। भगवान क्यों बोलते थे ऐसा, ऐसे क्यों बोलते थे? नहीं, सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं भक्त के हृदय में कुछ कुछ स्प्रिहा वो देखी जाती है, और जैसे भगवान बोले कि फिर पछताना नहीं पड़ेगा कि बाद में मेरा भजन करते हैं उनको किसी भी बात पर, देखिए सिद्ध होता है, किसी भी बात पर पछताना नहीं पड़ेगा, बस क्यों मेरा आश्रय लिया है ना, वो पछताना नहीं पड़ेगा। देखिए उनकी भी माता मर गई और फिर यक्षों के साथ झगड़ा कर दिया, हमारे भाई को मार दिया, लेकिन वही भाई के प्रेमी यहां पर कुछ न कुछ विचार कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि इस जगत में उन कितना दूषित चित्त व्यक्ति का होता है, कितना दूषित, ना भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं रंच कहीं रह जाता है क्या है? जैसे दक्ष प्रजापति भगवत प्राप्ति अष्टभुजा के रूप में भगवान का दर्शन किया उन अगमर्षण तीर्थ की घाटियों में, लेकिन तत्पश्चात नारद जी को गाली दे रहे जब उनके 11,000 पुत्र को ब्रह्मचारी बना दिया, मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। जीव गोस्वामी पाठ कर्म संदर्भ टीका में लिखते हैं कि इसी का कारण है जो शिव जी का अपराध किया है। यद्यपि तू महाराज ने किसी का अपराध नहीं किया था, लेकिन जगत को भगवान ने दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्त के पास अगर कोई इच्छा भी है तो इच्छा पूर्ति करके भी उनका सुख प्रदान करता हूं, तत्पश्चात तो मेरे पास आएगा ही। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और कुछ भोग का स्प्रिया हृदय में रखता है तो भगवान बोलते इस थर्ड क्लास पृथ्वी में क्या भोगेगा, स्वर्ग जाओ, फॉल डाउन होकर के ढंडेरा पीटना चाहिए लोगों को। अरे मुक्ति भी चाहिए तो भक्ति करो, क्योंकि उससे कम से कम पतन के लिए भक्ति करो, अधपात हो जाए भजन करते हुए इसलिए भजन करो, क्योंकि भक्ति इतना सुंदर वस्तु है कि जिनका अधपात हो गया उनको स्वर्ग मिलता है। जो हाहा करते हुए स्वाहा स्वाहा करते हुए काले शिष्यम जैसे शरीर होने के बाद मिलता है वो तो भक्ति में गिरने वालों को मिलता है। तो गिरने के लिए भजन किया जाए, वस्तु इतनी सुंदर है भगवान भक्ति, देखिए तो स्पष्ट दिखाया इन सारे श्लोकों से ध्वनित होता है कि भगवान की भक्ति कितनी सुंदर वस्तु, एक एक श्लोक से धनी निकलता है। इसी से कहते नेचन मुक्ति पदर मुक्ति, उन्होंने सोचा गए मैत्र जी कहते हैं धू महाराज सोच रहे थे ये मुक्ति देने वाले भगवान के पास जा करके भी उनके चरणों को प्राप्त करके भी बोलते मैंने मुक्ति नहीं मांगी, संसार बंधन देने वाली वस्तु की स्प्रिया की, इसलिए कहते तत्नाथ उपेवान, तो इसलिए उनका हृदय इस प्रकार उन श्लोक को प्राप्त हुआ। और ध्रुव महाराज सोचते हैं आगे और मैत्री जी उनके हृदय को बता रहे, मैत्री जी क्या बता रहे, समाज ना ये भवन के पदम विदु सना सनंद आदय ऊर्धव मासिर अहम सरवीर मुष्य पादियो छाया उपेत्यागत पृथक मति। दो महाराज सोचते कह रहे बड़े बड़े उद्धव नेता व्यक्ति सनकादिक जो मुनि वो व्यक्ति के लिए एक जन्म में भगवान का वो पाद पद्म का दर्शन नहीं हो सकता, इतना दुर्लभ। कहते मासे रहम सर्विर अमुष्य पाद, उन पाद पद्म को मैंने 6 महीने में कुछ मास में प्राप्त कर लिया और छायाम उपेति अगत पृथक मति, लेकिन मेरी मति में भिन्न कुछ बात थी, अतः मुझे जो लाभ मिलना चाहिए भगवत दर्शन अहर्निश होना चाहिए वो थोड़ी देर के लिए दर्शन दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गया, अभी 36,000 साल का वियोग दे करके अदृश्य हो गए। ये सोच रहे छाया उपेति अगत पृथक मति पद छाया, उन पद छाया को मैंने प्राप्त कर लिया भगवान की प्रसन्न सत्ता को मैंने प्राप्त कर लिया, भगवान को मैंने प्रसन्न कर लिया, लेकिन मेरी मति मेरी बुद्धि ठीक न रही उस टाइम। अहो बदमानात्म मंद भाग्य से पश्चात बोलते मेरे, ओहो मेरे मुझे दुर्भाग्य का नसीब देखी बोलते। क्यों ननात्म आत्म दृष्टि उस टाइम लगा, पदार्थ में दृष्टि हुआ पृथक मति को बता रहे भवच्छिद पादमलम गत्वा याचे यद अंतवत। जो भव छेदन करने वाले भगवान का पाद पद्मों को मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन संसार देने वाली चीज को मांग ली, उन पद्मों को प्राप्त करके भी पाद पद्मों को, और मैंने संसार देने वाली वस्तु को मांग ली, जो उनके मन में जो स्प्रिहा रही थी उन स्प्रिहा के लिए कितना पछता है। भक्त को किसी भी स्थिति में भगवान रखते हैं ये पछतावा देने के लिए रखते हैं कि पश्चाताप करें, अनुताप, और अनुताप में तप्त होकर के उनके हृदय में भगवत प्राप्ति का स्प्रिया, दोबारा भगवत दर्शन का स्प्रिया इतना भगवान भर देते हैं कि वो इधर छटपटाता रहता है, जैसे श्री भरत महाराज चित्र केतु जी इत्यादि सब छटपटाते हैं। क्यों उनको ये दुख मिला, भगवत विक्षोभ का जो दुख मिला, एक जन्म या दो जन्म लग गया, अनुतप्तम पश्चाताप के लिए वो पश्चाताप करा करके भगवान उनकी भक्ति को और सुदृढ़ और उच्च कक्षा का और गाढ़ा। ये पतला पतला करते हैं उसमें कुछ मजा नहीं आता, भगवान बोलते पतला वाला तो प्रवाही वाला छोड़ो, एकदम उसको गाढ़ा, इतना गाढ़ा हो जाए, और जितना गाढ़ा होता तो टेस्ट बढ़ता ना, तो गाढ़ा भक्ति को प्राप्त करते। मति विदूषिता दैवी, एक बार और ये देवता लोग दैव कहते हैं, ये देवता लोग वास्तव में जो कोई भक्त है यहाँ से बोलते मेरी भक्ति को वो लोग सहन नहीं किया, अरे ये ध्रुव यहाँ से 5 साल का बालक भगवत प्राप्ति करते वैकुंठ चला जाएगा अमर रहते, तो कहते हैं ये निश्चित दैव पतत भीर असहिष्णु यो नारद वत्सत्यम नाग्राहिष्यम असत्यम। बोलते हैं मेरी बुद्धि ने देवताओं को निश्चित देवता लोग ने बिगाड़ा, अन्यथा भगवान का भगवान नारद जी के उन बहुत सारगही वचन को मैं नहीं सुन करके मैं बोला कि नहीं है? ये जिनको भगवत प्राप्ति करना उनको उपदेश कीजिए, मुझे तो राज्य चाहिए, ऐसा कहे थे। निश्चित आपका जो वाक्य है वो उनके लिए बहुत अच्छा है जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। असल मतिन बोला देखो मेरी मति ना आग्राही, मैंने ग्रहण नहीं किया, इसको मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं, असत्यम मेरी बुद्धि, क्यों दोष देवताओं का है, क्योंकि देवता मेरे पद को सहन नहीं कर पाए, ईर्ष्या कर देते हैं मेरे पद को वो सहन नहीं कर पाए। दैवीं मायाम उपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न रिक्त तप्य द्वितीय अपि असति भ्रातृ भ्रातृव्य सिद्धिजा। इसी के कारण मेरी बुद्धि में उसी टाइम भी ये बात आ गई, ये देवताओं के कारण दैवी माया उपासित, माया उपासित प्रसुप्त इव भिन्न त्रिक कहते हैं। जिस प्रकार वो स्वप्न में अकेला व्यक्ति होता है, जब स्वप्न देखता है वो अकेला होता है, पदार्थ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन मन में ही पदार्थ का सृष्टि करके किसी से दुश्मनी, किसी की किसी का मित्र, किसी का शत्रु इत्यादि लोग मानने लगते हैं, कोई भिन्न है नहीं, भगवान की माया है, यहाँ कौन किसी का शत्रु है। तो बोलते स्वप्न में जिस प्रकार अकेला व्यक्ति किसी को मित्र, किसी को शत्रु के रूप में देखता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि द्वितीय अपि असति, मेरी मति भी उसी प्रकार इस संसार में मेरे भ्राति में शत्रु बुद्धि हो गई, मैंने भाई को शत्रु समझ, काम का शत्रु समझ लिया, और इसलिए मेरा हृदय तप्त हो रहा है, आज उनका फल मुझे मिल रहा है, क्यों मेरा हृदय तप्त है भगवत प्राप्ति के बाद, इसलिए मेरे भाई को मैंने शत्रु, वास्तव में इस जगत में कोई किसी का शत्रु नहीं, अगर शत्रु है तो अपना मन है। बहुत सुंदर उपदेश एकादश स्कंद में वामंती का ब्राह्मण देते हैं, कौन शत्रु है, किसके द्वारा यह सब हो रहा है, ये कमाल मन का है, मन ही मित्र और मन ही शत्रु है, ये अपना मन ही शत्रु है, वास्तव में कौन इसका शत्रु है, मन के अलावा उन मायावित मन के अलावा जीव का और कोई शत्रु नहीं है। इसलिए बाहर शत्रु कौन कौन है उसको नहीं देखना चाहिए, भीतर जागना चाहिए, वो सबसे बड़ा शत्रु भीतर बैठा हुआ है जो हमेशा व्यक्ति का उनका बुरा करने के फेर में ही पड़ा रहता है, कैसे बुरा हो कैसे बुरा हो। जब व्यक्ति अपने आप नहीं देख पाता है ना अपने लिए बुरी चीज, उनको भक्तों की संगति में अहर्निश रहना चाहिए और ऐसे भक्त आसपास रहना चाहिए जो हमेशा एक चाटा देकर के बता सके ठीक नहीं इधर चलो, भक्त संगति अनिवार्य। एक जगह कुछ पॉइंट पा करके शिल प्रभुपाद लिख दिया, भरत महाराज के पास कोई साधु नहीं था बताने के लिए कि महाराज हरिण लेकर के उठा करके आए ठीक है, आश्रम में क्यों ले जा रहे, छोड़ दीजिए बचाए भले ही वो उनके लिए ऐसा बात नहीं है, वो तो चकित ठाकुर बता रहे कि उनकी भक्ति को गाढ़ा करने, लेकिन लिया जा सकता है उपदेश, उपदेश तो व्यक्ति कहीं से ग्रहण कर सकता है, सुनिश्चित पग पग पर व्यक्ति को उपदेश मिल सकता है अगर वो उपदेश प्राप्त करना चाहते हैं तब, और नहीं तो फिर भागवतम में बैठ करके चित्त गायो क्या करेगा भागवतम, इधर पाठ हो रहा है और उधर आहा तो बहुत ध्यान से सुनता लगता है, वो ध्यान मानी ध्यान चिंतन वापिस का हो रहा है, अरे एक पैकेट कर ले लिया है ना, आज मार्केट में जाऊंगा 100% डबल भाव आएगा, उसी लिए खुशी है, चित्त यहां शरीर बैठा, भागवतम के क्लास में भी सुख नहीं मिलेगा, अर्थात जो वस्तु चाहिए वो नहीं मिलेगी। मन ही बड़ा शत्रु कहते मैं ये तत् प्रार्थना व्यर्थम चिकित्सा गत आयुषम प्रसाद्य जगत आत्मा तपसा दुष्प्राप्त साधन अभवत सिद्ध मया अहम भवम भाग्य विवर्जित। बहुत सुंदर बोलते हैं प्रसाद जगत आत्मा तपसा दुष्प्राप्त साधन, यद्यपि भगवान को प्रसन्न करना बड़े बड़े लोगों के लिए भी दुष्प्राप्त वस्तु है, सब कुछ व्यक्ति हासिल कर ले लेकिन भगवान की प्रसन्नता वो हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने कुछ ये कर लिया है, लेकिन कहते हैं मेरे लिए तो इसी प्रकार व्यर्थ हो गया जिस प्रकार जिनका आयुष्य खत्म होने वाला है, व्यक्ति की कुछ चिकित्सा की जाए दवा की जाए, जैसे दवा निष्फल होती है ऐसे मेरे लिए निष्फल हो गया, यही अनुताप है। इसी अनुताप के लिए उन आगे बढ़े चढ़े भक्तों की जीवन में कभी दुख दिखाई पड़ता है तो ये अनुताप के लिए दुख दिखाई पड़ता है कि वो अनुताप करे पुनः पुनः पश्चाताप करके अपने जीवन को पुनः शुद्ध। एक महान भगवत भक्त है, सिर्फ भागवतम में इतना सुंदर उपदेश है, वो उंगली पकड़ करके भगवान के पास ले जाना, उंगली पकड़ जहां कहीं भी थोड़ा भी आता है तो बोले इधर पर यहां लिखा है, कहीं थोड़ा भी अटकता है कहीं तो तुरंत भागवत भागवतम निर्देश करता है, ये चलो ये सीधा रास्ता है यहाँ चलना चाहिए, कुछ घबराने का बात नहीं है, घबराहट कैसे, कहते भगवत छिदम मया याचे हम भवम भाग्य विवर्जित, तो बोलते हैं लेकिन कहते मैं भाग्यहीन, उन भव लोग को छेदन करने वाले भगवान से इस प्रकार मांगा कर स्वराज्यम मानो मैं अभिक्षित तो बताओ बताओ जरा बताओ, वो बोलते हैं स्वराज्य देने वाले भगवान वैकुंठ देने वाले भगवान वैकुंठ पति को मैंने प्राप्त करते मेरा पुण्य कितना क्षीण है, इसको देखिए भगवत प्राप्ति के बाद कैसे बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत बड़े पूरी पृथ्वी के राजा को प्रसन्न कर ले और उनके बाद उनके पास जा करके उनको कहे कि वो जो थोड़ी वो भूसी के साथ वो कण वाली जो भूसी है ना, थोड़ा थोड़ा चावल का एक आध दो किलो को दीजिए, उसको उसमें भी मेहनत है फिर भी मैं निकाल लूंगा, कोई बात नहीं, भूसी साथ वाला दीजिए, आप प्योर नहीं दे सकते। बोले मैंने कुछ चावल के कण को मांगा, भूसी के साथ होती है, ऐसा कहते हैं। फली करण युवा अधन, जिस प्रकार वो कोई कंगाल व्यक्ति राजा को खुश करके उनके पास ये 200 या ये काट मन कुछ चावल की भूसी जिनमें थोड़ा थोड़ा कण, वो जानता है कि इसमें भी कण है, तो कण वाली भूसी मांग रहे, उसी प्रकार मैंने मांग, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। कहते स्वराज्य चत, यद्यपि भगवान वो स्वराज्य दिलाने में, जिनका स्वराज्य है भगवान की परम सेवा वो देने वाले। अच्छा देवता लोग क्यों बता रहे, अब देवता लोग तो ये लोग बोल रहे हैं इसलिए देवता लोग बता रहे, समझ में आई ना बात। देवता लोग को ये लोग बोल रहे हैं, अरे देवता लोग ये सारा काम करते हैं, वो बच्चा बन के आते हैं भक्त के पास, जब वो भक्ति करता है तो कोई ना कोई रूप में आकर के उनका भक्ति कैसे हटके वो व्यवस्था देवता लोग करते, दू महाराज ऐसा कहते, तो देवता लोग ऐसे कहते, अरे भाई भगवत वो जो बोलते हैं, अरे ये तो फिर जब उनको मिलेगा तो निश्चित और वासना करेगा और इच्छा करेगा, समझ है ना। तो परस्पर थोड़ा रहता है भक्तों में देता हूं, तो इस प्रकार मैत्री जी कहते कि हे विदुर जी, ओहो बाकी आप कितने धन्य है, कहते नहीं भाई मुकुंदस्य पदार बिंदिजो रजो सुशस्तात् भवाद्दिशाजना। अब देखिए विदुर जी का स्थिति को बताते हो, बोले आप जैसे जो भगवान के उन चरण मकरंद के रस में निविषित रहते अहर्निश, केवल उनकी कथा के अलावा कुछ जिनको नहीं सुहाता है, तो कहते थे तो जुषा वो भगवान के अंगरी के रेणु की खोज में रहते और सदैव कहते उनसे युक्त रहते, वांछन के दास्यम वृत्ते अर्थम आत्मा में यदश्चय लब्ध मन समृद्ध, उन आप जैसे व्यक्ति के मन अत्यंत समृद्ध होते क्योंकि निरंतर भगवत कथा ग्राही हृदय होने के कारण, कहते उनसे भिन्न वस्तु की यातना केवल मात्र उन रस को पुनः पुनः बढ़ाना चाहते। वो उनकी दासता के अलावा कुछ इच्छा नहीं करता, केवल भगवान से प्रीति करना चाहता। हम भक्तों को चाहिए विदुर महाराज या ध्रुव महाराज जैसे वैसी प्रीति की इच्छा भगवान से करनी चाहिए, और इतर पदार्थ कोई स्प्रिया मन में है तभी भी भगवान का आश्रय लिया है तो पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सारी बात जान करके भी अगर उन पदार्थों की स्प्रिया मन में रह गई पुनः पुनः, तो थोड़ा हालत खराब होगा, 2-4, 10 जीवन 50 जीवन या 1,000 जीवन हो सकता है। अरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, श्री राधा की जय, भगवान की जय, आयोरहि तमानंदेवं चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।